Welcome to this Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, also being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual fund and related matters. You can call us on our telephone numbers 2331-4444-2342-1050 and 2331-0464. And don't forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena.
धन्यवाद निशित. नमस्कार. घड़ी का इशारा हो चुका है शाम 6:30 का और अब वक्त है आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र का और आप सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं. जैसा कि आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप हमें इन फोन नम्बर्स पर कॉल कर सकते हैं. नम्बर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464. दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 यानी 011 डायल करना ना भूलें. आज की खबरों पर चर्चा करने के लिए और आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी. आकार जी, मैं मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
धन्यवाद.
और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं निशित कुमार.
वेलकम आकार. हेडलाइंस. Foreign investors pump in nearly 34,000 crore rupees into the Indian equities market so far in September. India signs agreements on clean and fair economy under the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, and Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal inaugurates Invest India's new office in Singapore for promoting investment in the country.
सितंबर महीने में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों में किया लगभग 34,000 करोड़ रुपए का निवेश. भारत ने समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा IPEF के अंतर्गत स्वच्छ और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर केंद्रित समझौतों पर किए हस्ताक्षर. और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया. और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की पहली खबर की ओर. सितंबर महीने में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों में लगभग 34,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है. डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने इक्विटी बाजार में 33,691 करोड़ रुपए का निवेश किया और ऋण बाजारों से 245 करोड़ रुपए की निकासी की, जिससे इस महीने में भारतीय पूंजी बाजारों में शुद्ध निवेश का आंकड़ा 33,446 करोड़ रुपए पहुंच गया. यह निवेश भारतीय पूंजी बाजारों में लगातार 3 महीने के सकारात्मक निवेश के बाद किया गया है. इस साल अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में शुद्ध निवेश का आंकड़ा 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है. वर्ष 2024 में अब तक एफपीआई द्वारा इक्विटी में 76,572 करोड़ और डेट में 1,08,662 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है. इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं संजय. संजय जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. सवाल पूछें अपना.
सर, मेरा सवाल है, जब म्यूचुअल फंड मैनेजर कोई सिक्योरिटी मीन्स शेयर बेचता है तो इन्वेस्टर को कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन क्या म्यूचुअल फंड हाउसेस को शेयर बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है उनको या नहीं?
नहीं संजय जी, जब ये जो भी फंड मैनेजर पोर्टफोलियो के पर्पस से कोई भी टैक्स कोई भी शेयर पोर्टफोलियो में खरीदता बेचता है तो फिर फंड हाउस को भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता. वो एक टैक्स एग्जेम्प्ट एंटिटी होती है तो उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता.
And our next caller is Animesh from Kolkata. Animesh, welcome to the show.
Good evening, sir.
Good evening, Animesh. Go on with your question.
What is the future prospect of any mutual fund for the next 2 years? Because global economy is affected by war in Gaza. Thank you, sir.
See, I believe you want to know the future prospect of investing in a mutual fund scheme in the current scenario. So I would say, as far as you are investing in domestic equities, so I believe your major portfolio is invested in domestic equities. As far as you are confident of the Indian economic growth and, you know, you are, you know, satisfied with or you are confident with the Make in India or the growth story of India, then there should not be a problem. You should continue with your investments.
Akar, we were discussing the first story wherein the foreign investors pumped in nearly 34,000 crore rupees in September itself. This is quite an amount. Now, considering the Fed rate cut that we just witnessed a couple of days back, how do you see this fund pouring into Indian markets?
So, I mean, things like this keep happening. You know, I mean, there are, you know, there are times when, you know, FPIs take out the money and then there are times when they put in the money. But all these things should not impact a normal retail investor. They should, you know, continue with their investment strategy, the long-term one, and they should not look at all these, you know, things. And all these things should not, in fact, impact the investing strategy.
और खासतौर पर SIPs की अगर हम बात करें तो जैसे अभी हमारे पहले कॉलर ने पूछा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को लेके, तो क्या SIPs को हमें कुछ इधर उधर करना चाहिए या फिर उसमें वैसे ही कंटिन्यू रहना चाहिए?
बिल्कुल किसी तरीके का चेंज नहीं करना चाहिए. आपकी जो भी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है आप उसको फॉलो करिए
जी,
और बस ये सुनिश्चित कर ले कि आप इक्विटीज में पैसा खाली इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि अभी मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है और बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है. आप केवल वही पैसा इन्वेस्ट करें जो कि आपको कम से कम 5 साल के बाद चाहिए
जी. और हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं प्रेम. प्रेम जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में. सवाल पूछिए अपना.
नमस्कार जी.
जी नमस्कार
सर. इसका समय कम से कम आधे घंटे का ही गड्ढा करा जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है. मेरा सवाल यह है कि हिंदुस्तान कब डॉलर के बराबरी के खड़ा हो जाएगा, जब डॉलर की कीमत भी हमारे रुपए की कीमत के बराबर होगी. इसमें हिंदुस्तानियों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो पहला सवाल एक्सपर्ट से ये है. दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो दिव्यांग लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, तो दिव्यांग लोग में इससे ब्लाइंड है, बाकी अदर जो होते हैं वो तो कंप्यूटर से सर्च कर लेंगे. तो इसके लिए उनके लिए क्या हेल्प कुछ हेल्पलाइन होती है या कहीं एक्सपर्ट से उनको जाते हैं इस चीज में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की उनको सुविधा मिले?
देखिए, जो आपका पहला सवाल है कि इंडियन रुपी डॉलर से कब बराबरी करेगा, देखिए वो तो बताना बहुत ही मुश्किल है. वो मेरे लिए क्या, वो किसी भी एक्सपर्ट के लिए बताना मुश्किल होएगा. अभी काफी ज्यादा डिफरेंस है और उस पे तो मैं कुछ ज्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा. बट जो आपका दूसरा सवाल है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए दिव्यांग लोगों के लिए, देखिए आपने एकदम सही कहा कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर जैसे जो एक नॉर्मल व्यक्ति है वो नॉर्मली ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है. बट इस केस में जो एक बेहतर तरीका रहेगा वो मेरे को ये लगता है कि जो भी आपका एक नजदीकी बैंक है आप वहां पे बैंक में जाइए. हर बैंक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कराता है, उनके अपने एजेंट्स होते हैं. और नहीं तो फिर एक एम्फी की वेबसाइट पे भी जाके आप अपने एरिया का एक वहां पे डालेंगे तो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का आप अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे तो वहां पे आपके एरिया में से जो भी कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कराते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी. तो यहां तक कि आपको सहायता लेनी पड़ेगी उनके लिए, या तो नजदीकी बैंक जाकर के या फिर यहां से. फिर जो वो एक म्यूचुअल फंड ब्रोकर होगा, एजेंट होगा, वो आगे का सारा जो भी पेपर वर्क है और जो भी फॉर्मेलिटीज है उसमें पूरी सहायता करा देगा. सो यहां पे मेरे को लगता है कि एक ये बेहतर तरीका रहेगा.
नेक्स्ट कॉलर इज आर एस दहिया फ्रॉम दिल्ली. मिस्टर दहिया, वेलकम.
सर नमस्कार.
नमस्कार, सवाल पूछिए.
I have selected 3 schemes for investment for a period of 5 years. I want to advise on the okay about the ministry. First is SBI Nifty Next 50 Index Fund. Next is Bank of India Flexi Cap Fund. And Investor Infrastructure Fund.
Last mein kya bola aapne, kaun sa fund hai?
Hello?
जी
इन्वेस्ट को
जी
एंड विच इज द सेकेंड एंड थर्ड वन
बैंक ऑफ इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड
हाँ और तीसरा
एंड इन्वेस्टको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
अच्छा
देखिए जो आपका पहला फंड है एसबीआई का ये एक इंडेक्स फंड है जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में लगाता है यानी कि जो स्टॉक के अगर साइज के हिसाब से जाए तो 51 से लेके 100 तक में लगाता है। अच्छा फंड है, एक इंडेक्स फंड है, ये केवल एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा। आप इसमें बने रह सकते हैं, आप इसमें निवेश करिए, बस अपना होराइजन लंबा रखिएगा। वो आपने पहले ही कहा कि आपका 5 साल से ज्यादा का होराइजन है। जो आपका तीसरा फंड था एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, वो देखिए एक तरीके का सेक्टोरल फंड है। अब जो सेक्टोरल फंड होते हैं वो क्या करते हैं, इस केस में वो खाली एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेगा। उससे होगा क्या कि जब कभी ये सेक्टर अच्छा कर रहा होगा तो आपको हो सकता है कि यहां पे एक आम फंड से ज्यादा रिटर्न्स मिले, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहां पे काफी ज्यादा नीचे आ जाता है। ये वाले जो सेक्टोरल फंड्स हैं इनमें आमतौर पे एक काइंड ऑफ अ शार्प डिक्लाइंस भी आते हैं। बीच में बहुत लंबे समय तक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स ने अच्छा नहीं करा था, अभी कुछ समय पहले अच्छा करना ही शुरू किया है। तो मेरी एक आम निवेशक के लिए आपके लिए भी एक ये राय रहेगी कि अनलेस एंड अंटिल आपको लगता है कि आप उस पर्टिकुलर सेक्टर पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, आप एक डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करिए। जैसे कि एक आपका फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, और वो फंड्स को पूरी छूट होती है कि वो किसी भी सेक्टर के कंपनीज में इन्वेस्ट करें।
जी, और दिल्ली से ही हमारे साथ योगेश जुड़ चुके हैं। योगेश जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, प्लीज सवाल पूछिए अपना।
जी नमस्कार आप सभी को।
जी नमस्कार
सर, मेरे दो सवाल हैं। एक तो मेरा एक म्यूचुअल फंड जो है मेरा ही एसेट का इमर्जिंग म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप का, उसमें उसका स्टार रेटिंग घटा करके पहले 5 था फिर 4 हुआ फिर 2 हो गया, तो भी इसमें कितने समय तक और बने रहना चाहिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आईसीआईसीआई के लार्ज एंड मिड कैप में शिफ्ट करने की। एक सवाल दूसरा ये है कि क्या आप मुझे 2 ग्रोथ फंड और 2 वैल्यू फंड रेकमेंड कर सकते हैं?
देखिए, जो आपका पहला सवाल है मेरा एसेट के लिए, उस फंड का अभी पिछले कुछ समय से परफॉर्मेंस थोड़ी सी ढीली चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में कुछ गड़बड़ हो। उनके फंड मैनेजर्स से भी जब भी हम लोगों की बात हुई है तो ऐसा कुछ उसमें बहुत बड़ा कुछ रेड फ्लैग नहीं दिखा है। तो अभी मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप एकदम से अभी उसको ना निकालें, क्योंकि उसका बहुत एक अच्छा हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड है और उसमें आप अभी बने रहिए, अभी जल्दी ना उसमें से निकालिए। और आपको जो एक फंड्स के नाम चाहिए थे, मैं कहूंगा कि देखिए, अगर आपको पहले तो मैं कहूंगा कि आपने 2 और 2 मतलब टोटल 4 फंड्स मांगे और एक ही ऑलरेडी आपके पास लार्ज एंड मिड कैप में, तो 4-5 फंड एक पोर्टफोलियो के लिए बहुत ज्यादा है। आपको अगर इसी उसमें एक ग्रोथ कैटेगरी में जो आपके पूरे आ जाते हैं फ्लेक्सी कैप में डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में, बहुत ज्यादा फंड ना रखिए। 2 से 3 फंड अच्छे फंड बहुत है। एक आपके पास ऑलरेडी है, आप इसमें चाहे तो एक पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप ऐड कर सकते हैं, वो थोड़ा सा वैल्यू ओरिएंटेड हो जाता है। और नहीं तो आप एक फ्रैंकलिन का या एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप भी अपने बकेट में डाल सकते हैं। तो बहुत ज्यादा फंड ना करें, उससे डाइवर्सिफिकेशन ट्रू सेंस में नहीं होता, कहीं ना कहीं इनके पोर्टफोलियोज बीच में ओवरलैप हो रहे होते हैं।
नेक्स्ट कॉलर इज अजय फ्रॉम दिल्ली। अजय,
हाँ जी, ये फोन निकालती है तो मेरा है 24 सितंबर को मेरा एसेट का पीएसयू बैंकिंग फंड खुलना है, तो ये क्या करेगा?
देखिए, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे सेक्टोरल फंड्स की या थीमेटिक फंड्स की, सो पीएसयू फंड भी एकदम वही चीज है। ये क्या करेगा, ये सिर्फ पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। अभी पिछले कुछ समय में पीएसयू काफी ज्यादा ऊपर उठे थे, उन्होंने एक ही साल में 100% से ज्यादा रिटर्न दे दिया था, फिर थोड़ा देखा जाए तो 90% के आसपास आ गए थे। तो अभी ये सारे फंड्स आ रहे हैं, तो एक आम निवेशक के लिए मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप इन सब जगहों पे इन्वेस्ट ना करें, बट बी सिलेक्टिव। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत सारे सेक्टोरल फंड्स आएंगे, सब में इन्वेस्ट मत करिए। अपना जो कोर पोर्टफोलियो है, यानी कि जो आपका मेजर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है 70-80%, वो आप एक फ्लेक्सी कैप डाइवर्सिफाइड इक्विटी में रखिए, और एक थोड़ा सा पोर्शन जिसको कि आप अपना फंड एलोकेशन कह सकते हैं या फिर आप उसको अपना एक सप्लीमेंट्री पोर्टफोलियो कह सकते हैं, वो अलग रखिए, जिसमें कि जो आप अपने सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स पे यूज करिए 5-7% खाली उसमें ऐसा पैसा डालें और केवल उन्हीं सेक्टर्स के स्पेसिफिक फंड्स में जाइए जिनमें कि आपको लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंट है उनकी परफॉर्मेंस को लेकर। और रही बात की एकदम ही नए फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं कहूंगा कि देखिए अगर आपको पीएसयूज में करना ही है तो अभी कुछ फंड्स पहले से भी पीएसयू स्पेसिफिक मार्केट में है, तो बेहतर रहेगा कि आप पहले उनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस देखिए, वो देखिए कि कैसा कर रहे हैं, जिसका एक लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड हो। एक नए फंड से हमेशा एक ऐसा फंड बेहतर रहता है जिसका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड हो।
जी, और गाजियाबाद से हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, प्लीज सवाल पूछिए अपना।
नमस्ते मार्केट मंत्र जी।
नमस्कार।
मेरा पहला सवाल ये कि 1,25,000 की जो टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए जो लिमिट है वो इसी साल से शुरू होगी या 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगी? इस साल 1,00,000 रूपये ही है, वो एक पहला सवाल। दूसरा सवाल सर, ये FIIs ने भी बहुत पैसा डाला, बीच में बहुत जा रहे थे, तो अभी इंडियन इक्विटी मार्केट में अगर 100 रूपये के समझ लीजिए है टोटल फ्री फ्लोट, तो कितना इनका एक्सपोजर है FIIs का, कि अगर निकालेंगे तो कितना हम नीचे जा सकते हैं? वैसे तो आना जरूर चाहिए। और सर एक तीसरा सवाल पूछना है कि अगर इवन इस मौसम में SIP में हम डालते जाए पैसा, मतलब इस दौरान 84,000 पे, तो व्हाट कैन बी फेयर एक्सपेक्टेशन फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन नेक्स्ट 10 ईयर्स SIP से रिफ्लेक्सी कैप फंड अप्रोक्सीमेटली? थैंक यू।
सी, योर फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट द एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 1.25 लाख रुपीज ऑन लॉन्ग टर्म गेन्स फ्रॉम इक्विटीज, इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर 24-25 इटसेल्फ। So, I mean, long term, you can avail this from this financial year itself. Your second question, I would in fact rather like to answer the third question first, which was about SIPs. You can absolutely continue with your SIPs, and over the long term, like you said that you have a horizon of about a decade. See, generally on the conservative side, the kind of return that we generally expect is around 12%, the annualized return. So that is what we generally expect on a conservative basis. But that said, there is no guarantee. No one can guarantee you, because these are market-linked returns. But as far as you have a long horizon, the risk and the chances of getting a lower return reduces. So despite of the fact that markets are at 83,000 or 84,000, keep investing in SIPs, initiate your SIPs, as far as you have a longer horizon. And the second question about the FIIs, I would like to tell you that though you know, markets generally get impacted whenever there is a large outflow from the side of FIIs, but recently over the past few you know, couple of months, or I would say now a year or so, what we have seen is that doesn't impact Indian markets that much. सो जो डोमेस्टिक हमारा रिटेल इन्वेस्टर है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कंपैरेटिवली। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड जस्ट यू नो फॉर्मुलेट योर प्लान एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग।
नेक्स्ट कॉलर इज रत्नाकर फ्रॉम मुंबई। रत्नाकर, वेलकम टू द शो, सवाल पूछो।
हेलो। यस, गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग।
मेरे दो सवाल है कि अभी जो आने वाला है सितंबर में SBI निफ्टी इंडेक्स फंड और HDFC निफ्टी इंडेक्स फंड जो आ रहे हैं लास्ट कैच, तो उनके बारे में वो फ्यूचर में कैसे रहेंगे, वो लेने में अच्छा रहेगा क्या? थैंक यू।
देखिए, ये दोनों ही जो आप मेरे को नाम बता रहे हैं, नाम से ये नॉर्मल निफ्टी इंडेक्स फंड है। निफ्टी इंडेक्स फंड मतलब कि जो एक हमारा निफ्टी का इंडेक्स है, ये जो सबसे बड़ी 50 कंपनियां होती है उससे एक इंडेक्स बना हुआ है। तो ये फंड्स केवल उस इंडेक्स को रेप्लीकेट करेंगे, यानी कि उस इंडेक्स में जो कंपनी जिस प्रपोर्शन में है ये पैसा उसी प्रपोर्शन में लगाएंगे। तो एक शुरुआती इन्वेस्टर के लिए, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए इंडेक्स फंड, लार्ज कैप बेस्ड निफ्टी इंडेक्स फंड अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप निवेश कर सकते हैं। बस जैसा कि मैं अभी तक इस प्रोग्राम की शुरुआत से कहता आया हूं, बस ये ध्यान रखिएगा कि आपका होराइजन 5 साल से ज्यादा हो और आप इसमें लमसम निवेश ना करें, SIP के जरिए ही करें।
जी, और फरीदाबाद से हमारे साथ राजकुमार जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, सवाल पूछिए अपना।
नमस्कार जी।
जी नमस्कार
सर, अभी कार्यक्रम आपका सुन रहा था तो सर ने ये बोला था कि ब्रांच में जाके वो बैंक वाले भी म्यूचुअल फंड
देते हैं और मैंने पता किया था अभी एक महीना पहले, तो एक बैंक के मैनेजर बोलते हैं हाँ म्यूचुअल फंड आपके हमारे बैंक से हो जाएगा, और हमने अपने बैंक से जाकर जानकारी ली तो वो मैनेजर साहब बोलते हैं नहीं ये सब नहीं होता बेकार है, तो ऐसा क्यों कन्फ्यूजन है दोनों सरकारी बैंक?
देखिए जितना मैं समझ पाया आप कह रहे हैं कि आप दो बैंक्स में गए, दोनों जगह अलग अलग आपको वहां से सलाह मिली, किसी ने कहा कि अच्छा है किसी ने कहा कि अच्छा नहीं है। देखिए बैंक्स में ये जो लोग होते हैं ये बेसिकली म्यूचुअल फंड एजेंट्स होते हैं, तो कई दफा ऐसा होता है कि किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, हर किसी की ओपिनियन होती है, किसी की ओपिनियन में कोई चीज अच्छी होती है किसी की ओपिनियन में चीज अच्छी नहीं होती। म्यूचुअल फंड बेसिकली आपको यहां पे जानने की जरूरत है कि म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली है क्या। म्यूचुअल फंड होता है कि आपको एक ये पूल्ड व्हीकल है जो आपके बेसिस पे एक एक्सपर्ट पैसे इन्वेस्ट करता है एक स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में। ये स्टॉक्स बेसिकली कंपनीज के होते हैं जो कि डिपेंड कर सकते हैं आपने किस टाइप के म्यूचुअल फंड में निवेश किया है। देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो इक्विटीज है, स्टॉक्स है, शेयर मार्केट है, वो अच्छा करेगी इंडिया का क्योंकि हमारी ग्रोथ स्टोरी अच्छी है यहां पे। तो जिन लोगों को डायरेक्ट कौन सा स्टॉक खरीदना है कौन सा बेचना है या उस सबके स्किल सेट नहीं है या टाइम नहीं है, उतना टाइम नहीं लगा सकते, उतनी जानकारी नहीं है, उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड। इसका एक जो दूसरा बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि आप एक बहुत छोटे से अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं। आप केवल 500 रुपए महीने से शुरुआत कर सकते हैं, बल्कि अब तो कुछ फंड
100 रुपए
बल्कि अब तो कुछ ऐसे भी फंड आ गए नवी के जिसमें कि आप 10 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडेक्स फंड। तो वहां पे आप होता क्या है कि आप केवल 10 रुपए से, अगर जैसे भी हम लोग बात कर रहे थे इंडेक्स फंड की, वहां पे 50 स्टॉक्स होते हैं, आपको केवल 10 रुपए में 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो मिल जाता है जो कि एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड बेट हो जाती है, बहुत ही रिस्क फ्री हो जाता है। तो देखिए यहां पे मैं कहूंगा कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, इक्विटी में करना चाहिए, बट यहां पे जरूरी है कि आप सही तरीके के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए आप सबसे पहले यह सुनिश्चित कर ले कि जो भी आप पैसा निवेश कर रहे हैं आपको कम से कम 5 साल के लिए लगाना है, और इक्विटी में शुरुआत करने के लिए या तो आप एक इंडेक्स फंड पकड़े लार्ज कैप, या फिर आप एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड पकड़े और एक मुश्त पैसा ना लगाए, एसआईपी के जरिए जाए।
जी एंड मूविंग ऑन टू सम अदर स्टोरीज, द यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे इनॉग्रेटेड इन्वेस्ट इंडियाज न्यू ऑफिस इन सिंगापुर। द ऑफिस विल सर्व एज द डेडिकेटेड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर कंपनीज फ्रॉम द रीजन लुकिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया, fostering collaboration across sectors. Prime Minister Narendra Modi had announced to set up this office during his visit to Singapore in September this year. The Singapore office is Invest India's first overseas office. And meanwhile, speaking yesterday, Mr. Goyal also said that India is on the way to become the third largest economy by 2027, with the country's growth rate projected at around 7%, while addressing the 12th East Asia Summit Economic Ministers meeting in Laos yesterday, Mr. Goyal reiterated the country's commitment to strengthen the East Asia Summit Forum and acknowledged its role in promoting peace, stability and economic prosperity. In some other stories, India has signed the first of its kind agreements focused on a clean economy, fair economy and the overarching Indo-Pacific Economic Framework, that is IPEF, in Delaware, USA. These agreements were exchanged under the Indo-Pacific Economic Framework, IPEF, for prosperity yesterday in the presence of Prime Minister Narendra Modi, who is on a 3-day visit to the United States for the Quad Summit. The agreement on clean economy intends to promote technical cooperation, workforce development, capacity building and research collaborations. It will facilitate investments and project financing, including concessional financing as well as joint collaborative projects, with a particular emphasis on supporting micro, small and medium enterprises, that is MSMEs. The Fair Economic Agreement seeks to create a more transparent and predictable trade and investment environment across the Indo-Pacific. Meanwhile, the overarching IPEF agreement aims to establish a high-level political oversight framework at a ministerial level for the various individual IPEF agreements, providing general guidance and goals while aligning with leaders' vision and mandate for the IPEF. Well, Akar, some of our callers were really curious to know about the sectors, the index funds, the thematic funds. But I'm on a different point here. Let's talk about the caps here, the capitalization, the small, the mid, and the large. Generally, if we look at the past 12 months or so, or rather 18 months, the small and the mid, both the caps have been really been going hammer and tongs, if we may say so. But now, with almost market at the historic highs, do you really see some more steam kind of remaining in these kind of funds, if at all?
See, what I would say is that mid valuations, when it comes to mid and small caps, what most of the experts and fund managers believe is that they might be stretched right now. But how much stretched are they, and whether they will fall from here or they will continue to go upwards, that is slightly difficult to say.
Mm-hmm.
So having said that, it is very important that you maintain a certain kind of asset allocation, even when it comes to the market cap breakup of your equity portfolio. So generally, the mid and small cap exposure for a normal investor should not be more than, say, 25% to 30%. So having said that, I think one should be mindful
also,
of the same.
Also yeah. Depends on the age bracket in which the person
Definitely. More than the age, it is mostly about the time of your investment, the horizon that you have in hand, and the purpose for which you're investing, your risk tolerance level. So that is the main thing. Because mid and small caps are prone to sharp declines. So if you go back to the year 2008, small caps dropped by almost 60%. So meaning that someone who would have invested a lakh of rupees, he would be left with just 40,000 rupees.
Yes.
So just don't forget that kind of times, and be aware that small caps and mid caps can give you that kind of jolts. And then invest carefully.
Yes. आकार जी, हमारे कई सारे कॉलर्स ने जैसा कि अभी निश्चित में भी बात किया कि सेक्टोरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स के बारे में आज खास तौर पे काफी कॉलर्स ने पूछा है. अगर हम देखें तो चाहे किसी भी सेक्टोरल फंड की बात करें, चाहे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर या डिफेंस, एनर्जी, किसी भी सेक्टर में है, अगर हम एम्फी का डेटा देख रहे हैं तो तकरीबन जनवरी से लेकर अगस्त तक जो है 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया. तो क्या है ड्राइविंग फोर्सेज के पीछे?
देखिए, सबसे पहले तो अभी बहुत ज्यादा मार्केट में एनएफओज आ रहे हैं और एनएफओज के साथ में जो चीज है, इस वक्त सारे फंड हाउसेस केवल थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स लॉन्च कर रहे हैं, बट उसकी एक अलग वजह है. वो इसलिए है क्योंकि आज से कुछ साल पहले सेबी ने एक रिकैटेगराइजेशन एक्सरसाइज की थी, जिसमें की हो गया था कि कोई भी फंड हाउस एक्टिवली मैनेज्ड फंड एक कैटेगरी के अंदर सिर्फ एक ही रख सकता है.
जी.
तो उस वजह से अब उनके पास और कोई बकेट बची नहीं है. तो वो केवल, क्योंकि ये जो कंडीशन थी ये पैसिवली मैनेज्ड फंड्स और सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, तो इस वजह से हर कोई वहां पे फंड्स लॉन्च हो रहे हैं. तो वो एक नई स्टोरी के तरह बेचे जाते हैं. इस वक्त मार्केट ऊपर है, तरह तरह के बेचे जाते हैं, उनमें एक अलग प्रॉमिस शो किया जाता है, और इसलिए उनमें काफी पैसा आ रहा है इस वक्त.
जी. और क्या आपकी सलाह रहेगी संक्षिप्त में, अगर आप बताएं कि सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स के पीछे जाना चाहिए, खासतौर पर नए निवेशक को?
नए निवेशक को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. हाँ, अगर आपको अच्छे से पूरी नॉलेज है, आप उनके तरफ जानते हैं, तो थोड़ा सा जाइए, वरना दूर रहिए.
जी. और अब वक्त है इस चर्चा को यहीं विराम देने का. आकार जी, मार्केट मंत्र में आने के लिए और शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
थैंक यू.
और श्रोताओं, अब स्पर्श और निश्चित को दीजिए इजाजत. मार्केट मंत्र की टीम कल शाम 6:30 पर फिर होगी आपके साथ. अंत में अंग्रेजी में हेडलाइंस एक बार फिर.
बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. फॉरेन इन्वेस्टर्स पंप इन नियरली 34,000 करोड़ रुपीज इनटू द इंडियन इक्विटीज मार्केट सो फार इन सितंबर. इंडिया साइंस अग्रीमेंट्स ऑन क्लीन एंड फेयर इकोनॉमी अंडर द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल इनॉग्रेट्स इन्वेस्ट इंडियाज न्यू ऑफिस इन सिंगापुर फॉर प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री. एंड दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्र. फ्रॉम द एंटायर टीम हियर, इट्स गुड बाय. Oh, 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 oh